और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि तुम्हारे अतराफ में बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी। जिन लोगों पर शदीद खून चुका और हौलनाक आफत टूटी, इनमें बरामक्का भी हैं जो कैशो इशरत जूदो सुखा और टीप टाप में शोहरत रखने वाला ख़ानदान था। इन पर जो आफत टूटी, इसने इन्हें एक निशान इबरत बना दिया, एक मिसाल हो गई कि हारून रशीद ने पलक झपकते में इनको पकड़ लिया जबकि इशरत के मारे गफलत में थे और तन आसानी की चादर ओढ़े पड़े थे। वो खेल कूद में मगन थे कि अल्लाह के अजाब ने आ लिया। अजाब के लिए भी इस शख्स के हाथ चुने गए जो इनका सबसे करीबी और दिली नेमत यानी वलिये नेमत था। इसने इनके घरों को बर्बाद, महल्लात को वीरान और हुरमतों को बेआबरू कर दिया, इनके बांदी गुलाम छीन लिए, इनका खून बहाया, इन्हें हलाकत की जगह डाल दिया, इनको अजियतें देकर इनके प्यारों के दिल छलनी कर दिए, इनके बच्चों को तड़पाया और रुला दिया। अल्लाह की शान है, इनकी कितनी नेमतें छीन ली गईं, इन पर कितनी आँखें रोईं। ऐ आँख वालों, इबरत पकड़ो, इस शदीद मुसीबत से ज़रा की ज़रा पहले ही तो वो दीबा और हरीर में चल रहे थे यानी रेशम पहनते थे, उमंगे और आर्ज़ में पूरी कर रहे थे। क्या ही वो हौलनाक सितम था जो इन पर ढाया गया। क़यामत थी जो टूटी, अय्याम की बेखबरी में वो मारे गए। तुम इन लोगों के मस्कन में इकामत गजी हो गए यानी आज तुम उन्हीं घरों में रह रहे हो कि जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और तुम्हारे सामने वाज़े हो गया कि हमने इनके साथ क्या किया और हमने तुम्हारे सामने मिसालें बयान कर दी। इनके सरों पर झंडे लहराते थे और दाएं बाएं फौजों के परे होते थे। मतलब बड़ी ऐश थी, बादशाही थी, हुकूमत थी। वो आज़ादी के साथ दादो ऐश देते, उन्होंने शराब को पानी, वरम को मोटापा, दुनिया को हमेश की और फना को बका समझ लिया था। समझ आया ये जुमला? सराब क्या होता है? मिराज, दूर से चमकती भी रेत जो सहरा में ऐसे लगती है कि पानी है, और किसी को वरम आ जाए, सोजें पड़ जाए तो लोग कहते सेहत अच्छी हो गई, और दुनिया को हमेश की और फना को बका समझे। कितनी कुताह नजरी है। किसी का आईसाइट टेस्ट लेना हो ना तो इसको देख लीजिए। डॉक्टर्स तो बड़े छोटे हरूफ दिखा कर कहते हैं कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात में डाल कर देख रहा होता है कि इसकी आईसाइट वीक है कि नहीं, और अमूमन हमारी क्लोज की आईसाइट वीक होती है। हमें अपने इर्द गिर्द की नेमतें तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, और दुखों के मामले में दूर की चीज़ को हम खुर्दबीन से देखकर करीब समझ लेते हैं। और फिर ये ख्याल क्या था कि अमानत वापस ना ली जाएगी, आरियत की ज़मानत ना देनी पड़ेगी। आरियत कहते उधार ली हुई चीज़ की, यानी ये दुनिया की हर चीज़ उधार लेकर आए हैं आप और मैं, और उधार की अदायगी ना की जाएगी। उन्होंने समझा था कि हमारी तरफ लौट कर ना आएंगे, ये भी अल्लाह ताला का शिकवा है कुरान में। और शायर कहता है कि ज़माने के हादसात मुख्तलिफ किस्म के, मुतनव्वो, नौ नौ के, कलरफुल, यहाँ कभी रंजो गम है, कभी खुशी व मुसर्रत, दुनिया फ़ानी को बका नहीं, ना एक ही हाल पर रहती है। सुबह उठे तो खुश थे, शाम हुई तो कब्र में पहुँच चुके थे। जब किसी का अचानक इंतकाल होता है तो लोग हैरान ही रहते हैं, कल इधर थे, इधर बैठे थे, अभी सुबह मैंने देखा, मेरी अभी एक घंटा पहले बात हुई। लोग अफसाना बन जाते हैं। हारून रशीद एक लम्हे में नाराज़ हुआ और इसने अपने गज़ब की तलवार से इनकी टिक्का बोटी कर दी। जाफ़र बिन याहया बरमक्की कत्ल हुआ, इसे सूली दी गई, फिर लाश जला दी गई। इसके बाप याहया बिन खालिद और भाई फजल बिन याहया को जेल में डाल दिया। इनके माल और जायदादें जब्त कर लीं। कई शोरा ने बरमक्का के मरसिए कहे, अर रिकाशी, और बकौल बाज अबू नवास ने एक कसीदा कहा, सुनिएगा ज़रा, ऐसा शख्स जिसके से इतना कुछ था और फिर एकदम छिन गया। शायर कहते हैं कि अब हमें आराम मिल गया, हमारी सवारियों को भी, अब देने और मांगने वाले सब रुक गए। घोड़ों से कह दो कि तुम अब रात को चलने और सहराओं को तय करने से छुट्टी पा गए। जब हम दुनिया से जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें छुट्टी पा देंगी, वो चीज़ें जिनको हम दिन रात यूज़ करते हैं, फिर लोग तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर कहते हैं कि मौत से कहो कि जाफ़र को तो तू ले गई, लेकिन इसके बाद किसी सरदार को ना पाएगी, यानी इतना बड़ा सरदार चला गया, अब तू किसको आएगी। फजल के बाद उताया से कहो कि मुअत्तल हो जाएं, आफतों से कहो अब फिर टूट पड़ो, देख लो कि हिंदुस्तानी हाशमी तलवार ने हिंदी बरमक्की तलवार को तोड़ डाला, यानी जो मारे गए उनको ख़ुद तलवार कहा जा रहा है। अरे काशी ने जाफ़र की सूली पर लटकी नाश को देखा और कहा, बाखुदा अगर चुगलखोर का डर और खलीफा के जासूसों का खौफ ना होता तो हम तेरी लाश का तवाफ़ करते और तुझे ऐसे चूमते जैसे खाना काबा को लोग चूमते हैं। इब्ने याह्या, तुझसे पहले मैंने ऐसी तलवार नहीं देखी जिसे दूसरी तलवार ने कुंद कर दिया। अब दुनिया लज्जात दुनिया और आले बरमक की हुकूमत को सलाम हो। मरवी है क्या रिकाशी को हारून ने बुलाया और पूछा, जाफ़र हर साल तुझे क्या देता था? यानी तो इतने उसके कसीदे गा रहे, वो तुझे देता क्या था? इसने बताया 1,000 दीनार। तो हारून ने इसके लिए 2,000 दीनार देने का हुक्म दिया। ज़ुबैर बिन बुकार अपने चचा मुसब अल ज़ुबैरी से नकल करता है, किसने बताया कि जब रशीद ने जाफ़र को कत्ल किया, एक औरत बुढ़े गधे पर सवार गुजरी और इसने कहा, बखुदा ऐ जाफ़र, आज तो निशाने इबरत है, तू कल भी कारनामों की इंतहा था। फिर इसने ये फसीह अशार कहे, यानी बहुत ही मानी वाले, मीनिंगफुल, कहते हैं कि जब मैंने देखा कि तलवार जाफ़र के खून से रंगीन हो गई और खलीफा के पुकारने वाले ने यहया के बारे में आवाज़ लगाई, मुझे दुनिया पर रोना आ गया और यकीन हो गया कि आज तो ये जवां मर्द दुनिया से जाने ही वाला है। दुनिया यूं ही आनी जानी है, एक को नेमत और एक को मुसीबत देती है, एक को बादशाही के बुलंद सुरैया से नवाजती है, दूसरे को तख्त सरा तक पहुँचाती है। तख्त सरा क्या है? गीली मट्टी, ज़मीन का सेकंड क्रस्ट कह लीजिए। अल्लाह अकबर। जब अबू जाफ़र अल मंसूर ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन को कत्ल कर दिया तो इनका सर अपने दरबान रबी के ज़रिए इसके बाप अब्दुल्ला बिन हसन के पास जेल में भेजा। उन्होंने सर अपने हाथों में रख लिया और कहा, ए अबुल कासिम, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, तुम इन लोगों में से थे जो अल्लाह के साथ किए अहद को पूरा करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते और जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इसे जोड़ते हैं, अपने रब से डरते हैं और हिसाब के इंजाम से कांपते हैं। फिर उन्होंने शायर का ये कौल पढ़ा, ऐसा जवान था कि इसकी तलवार इसे जिल्लत से बचाती थी और बुरे उमूर से वो इज्तनाब करता था। फिर उन्होंने मंसूर के दरबान रबी की तरफ मुड़कर कहा, अपने आका से कहना, तुम्हारे ऐशो इशरत और हमारी बदबख्ती पर एक मुद्दत गुजर चुकी है, अब मामला अल्लाह के हाथ में। अल अब्बास बिन अल अहनफ ने इस मानी को लेकर कहा, यह भी कहा जाता है कि कहने वाला अम्मारा बिन अकील है। अब देखिए, ये अरब कल्चर में होता ही था कि लोग एक दूसरे के जाने के बाद उनके बारे में इस तरह से बातें करते थे। और फिर कहता है कि अगर तुम एक बार मेरे और अपने हाल पर नज़र कर लो तो तुम्हें ख्वाहिश नफ्स से हिजाब आए, यानी फिर तुम नफ्स की ख्वाहिशों को दबा दोगे। रोज़ाना हमारी बदहाली का दिन गुजरता है, तुम्हारे ऐश के दिन के साथ ही इसका भी हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। कौल अला कौल में यूं ही नकल है, यानी मुराद यह है कि कहाँ की खुशियाँ और कहाँ के गम, कौन गया और कौन है, सब बराबर हो जाएंगे। और हकीकत है कि इस दुनिया ने एक दिन मट्टी बन जाना है। इस वक्त भी आपको जो तकलीफ़, गम, परेशानी लाहक है, उसको तसव्वुर में लाइए और ख़ुद को यकीन दिलाइए कि ये नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। इट शैल पास सून, इट शैल पास सून। इतना सुकून मिलेगा आपको कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एक ख्वाब देख रहे हैं। दिल पे कोई दर्द नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगी। ज़रूरत है इस बात की कि आपको मुझे इस चीज़ से अल्लाह सुभान व तआला ये फ़ायदा दे दे कि हम हौसला पा लें। देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ों को बंदा हरा नहीं सकता, तो फिर इसको कबूल कर लेना चाहिए। और आपकी मेरी औकात भी यही है, मालिक ने आपके मेरे लिए जो सोचा है वो सबसे अच्छा, और इसी का नाम बंदगी है, इसी का नाम आजसी है। कहिए मेरे मालिक, जो तूने मेरे साथ किया वही बेहतरीन था। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला पे नज़रें लगाते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर सोचा जाए तो अब हारून रशीद और इब्नुल जाफ़र अल बरमक्की दोनों कहाँ हैं? यानी एक कातिल और एक मकतूल, किधर हैं दोनों? ख़त्म। मारने वाला भी गया, मरने वाला भी गया। वो आमिर यानी जुल्म करने वाला जिसने महल में बिस्तर पर पड़े हुए कत्ल का हुक्म जारी किया और जिसे सूली देकर जुल्मन कत्ल कर दिया गया, सब क्या हुए? इनका तो निशान भी बाकी नहीं रहा। वो कहते हैं ना, मिटे नामियों के नाम कितने। उस दिन ये सब हाजिर होंगे जब अदलो इंसाफ होगा اور کوئی ظلم و زیادتی کا شبہ تک نہ ہوگا، یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو راضی رہیے اللہ سے بھی بندوں سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود اپنے لیے فرماتے ہیں، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، سورۃ مریم 52 ہے۔ اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس دن حساب تم پر پیش کیا جائے گا اور تم سے کچھ بھی چھپایا نہ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا سکون ملتا ہے ان باتوں کو سن کر۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، تو ہم بھی چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا ہمارے جانے سے۔ یحییٰ بن خالد پر مکی سے پوچھا گیا، بھائی یہ آفت کیسے ٹوٹ پڑی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو اس نے کہا، غالباً یہ کسی مظلوم کی بد دعا تھی جو رات کی تنہائیوں میں اس نے کی اور ہم اس سے غفلت میں تھے۔ یہ ہے سیلف انالیسس۔ ہمیشہ لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے غم، صدمے، تکلیف پہ بھی اپنی ہی کوئی غلطی ڈھونڈیے اس کو برا کہنے کی بجائے۔ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر پر بھی آفت پڑی، اس نے اپنی قید میں فریاد کی، کہتے ہیں دنیا سے ہم جب نکلے تو دنیا والے تھے، اب جیل میں ہیں تو زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ سچی بات ہے نا، یہ زندگی بھی کیا ہے جو قید کی زندگی ہے۔ کسی دن جب کسی وجہ سے جیلر قید خانے میں آتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دنیا سے تو یہ شخص آیا ہے، خوابوں سے ہم دل بہلاتے ہیں اور دن میں خواب کا ہی چرچا کرتے ہیں، یعنی خوابوں میں تو مزاد ہے نا، وہیں رات کو جو دیکھ لیتے ہیں دن بھر اسی کو یاد کرتے ہیں، اگر جسم جیل میں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو خوش رہنے کا ایک بڑا پیارا راز ہے۔ اگر آپ کی حقیقت کڑوی ہے نا تو اچھے اچھے خواب دیکھیے، آپ کو اپنے خوابوں کی اتنی سچائی کا یقین ہوگا کہ آپ کو وہ غم غم نہیں دکھے گا۔ اگر خواب اچھا ہوا تو سست روی سے آتا ہے، برا ہوتا ہے تو جلدی سے آ جاتا ہے اور کسی انتظار میں نہیں رہتا۔ آخر کے دونوں مصروں میں بدفعلی اور نحوست کا تاثر ہے، ان سے مجھے کسی شاعر کے جاہز کے بیان کردہ وہ اشعار یاد آ گئے جو اس نے کتاب البغال میں ذکر کیے تھے۔ کہتا ہے کہ محلے کی ڈاک آتی ہے ایسا خط جس میں مصائب زمانہ کا تذکرہ ہو، جلدی سے مل جاتی ہے، یعنی بری خبریں جن خطوں میں ہوتی ہیں وہ تو بڑی جلدی ریسیو ہو جاتے ہیں، اور شر کی خبر میں تو بس ایک دن رات لگتے ہیں، لیکن کوئی اچھی خبر ہو تو سست روی سے چلتی ہے اور چار دنوں میں پہنچتی ہے۔ اصل میں وہ نہیں چار دنوں میں پہنچتی، ہمیں انتظار بہت ہوتا ہے اور انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور بات تو سچ ہے، آپ دیکھیں کبھی کسی خوشی کا انتظار ہو، شادی کا، کوئی بھی موقع، تو پھر جب وہ وقت آتا ہے پھر کہتے گزر گئی، ہائے ایک دن گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، ہائے اتنے دن سے تیاریوں میں لگے تھے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، دن ہی نہیں ختم ہوتا۔ اگر آپ کو دن کے شروع کے حصے میں خبر مل گئی، یقین کریں آپ کو لگے گا یہ دو دن کے برابر کا ایک دن ہے، جب گھڑی دیکھیں تو کبھی 5 منٹ کبھی 10 منٹ گزرے ہوتے ہیں۔ فارس کے کسی بادشاہ نے اپنے حکیموں میں سے کسی ایک کو قید کر دیا، تو اس نے ایک رکا لکھ کر بھیجا۔ اب اس کے خوبصورت لفظ سنیے گا، کہتے کہ میرے اوپر قید میں جو گھڑی بھی گزرے گی وہ مجھے نجات سے اور تم کو مصیبت سے قریب کر دے گی، یعنی ہر وقت گزرتے ہوئے مجھے نکالنے کے قریب کر دے گا نا، لیکن تم نے جو میرے اوپر کیا ہے اس پہ تم سوچو، اور میں آزادی کا منتظر ہوں، تم آفت کا انتظار کرو۔ آپ دیکھیے کہ کسی پہ بھی زیادتی جب کرے کوئی تو یہ بات یاد رکھے کہ آج نہیں تو کل میرے اوپر اس کا وبال تو پڑے گا۔ اور کچھ جرم ایسے بھی ہیں کہ جس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ حقوق العباد، ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، انسانوں کے حق نہ دینے والا۔ تو ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کریں۔ اسی طرح اندلس کے سلطان ابن عباد پر مصیبت ٹوٹی، وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا، صراط مستقیم سے دور، سارا وقت لونڈی غلاموں سے خرمستی، باجے گانے، دف اور تمبور، شعر و شاعری اور سما میں گزرتا تھا، یعنی ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اندلس کے نصرانیوں نے طاقت شروع کر دی، यानी लोगों ने देखा कि ये बादशाह तो केयरलेस है, तो चलें फिर हम ज़रा जाकर इसको हटाते हैं। मजबूर होकर इसने अफ्रीका की इब्ने ताशफीन से मदद मांगी। चुनाचे वो समंदर पार करके आया और इब्ने अब्बात की मदद की। इब्ने अब्बात ने इसकी मेज़बानी की, बागात, महल्लात और मकानात में इसका एज़ाज़ और इकराम किया। इब्ने ताशफीन शेर की तरह शहर के अंदर बाहर का जायज़ा लेता रहा और 3 दिन के बाद इसकी फ़ौजें इस कमज़ोर सल्तनत पर टूट पड़ीं। इब्ने अब्बात कैद कर लिया गया, इसकी बादशाहत ख़त्म हो गई, बागात और महल्लात सब वीरान हो गए। अफ्रीका के शहर अगमात में इब्ने अब्बात को रखा गया। इब्ने ताशफीन ने उंदलुस की ज़मामे की इकतदार यानी वहाँ का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। इनका दावा था कि अहले उंदलुस ने ख़ुद ही इनको बुलाया था और वह इनकी हुकूमत चाहते थे। दिन गुजरते रहे। एक दिन इब्ने अब्बात की भूखी बेटियाँ नंगे पाँव चीथड़े पहने धूल में रोती बाप से मिलने आईं। इस हाल में इन्हें देख कर इब्ने अब्बात भी रो पड़ा। ईद का मौका था, इसने ये दर्द अंगेज शेर कहे। इब्ने अब्बात, माजी में तुम भी ईद की खुशियाँ मनाया करते थे, अब अगमात की ईद ने तुम्हें रंजीदा कर दिया। जहाँ तुम कैद की हालत में हो, तुम अपनी बेटियों को फटे पुराने कपड़ों में देख रहे हो। वो भूखी हैं, इनके पास दमड़ी भी नहीं। वो लोगों का चरखा काटती हैं, वो तुम्हें सलाम करने आईं, खुले सर और निगाहें झुकी हुई। वो नंगे पांव चलती हैं, गोया कि वो कभी मुश्क व काफूर पर नहीं चली, यानी कभी कभी तो मुश्क पे चलती थी, तो आज नंगे पांव हैं। फिर शायर इब्ने लबाना इब्ने अब्बात के पास आया तो इसने कहा, अमन और सलामती की खुशबुएं सूंघो, मैं तुम्हें इस फिज़ा में मुश्क मिली शराब पिलाया करता था। तुम चूँकि नेमतों वाले थे, इसलिए हकीकत में न सही मजाजन ही अपने आप को नेमत वाले समझो। यानी अब आज वो नेमतें चली गई तो तसव्वुर में ले लो कि आज भी हैं। देखिए सोचना ही है ना, साइकोलॉजी में बहुत सारे इलाज इस तरह करवाए जाते हैं कि आप सोचिए आप इधर हैं, आप बाग में हैं, आप जन्नत में हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर इंसान खुश होने के लिए सोच भी ले तो क्या बुरा। और ज़िंदगी तुम्हें रोती है, खुशबू गिरेबान चाक मातम कर रही है और बिजली कड़क कर तुम्हारा नाम लेती है। एक अछूता कसीदा है जिसे अज़ाहबी ने नकल किया और उसकी तारीफ़ की। तो आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल हम उन लोगों के हालात पढ़ रहे हैं कि जिनको ज़माने के उतार चढ़ाव ने किधर से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे यहाँ कहते हैं ना अर्श से फर्श, बिल्कुल वही कैफियत इसमें भी दिख रही हैं। इसी तरह तिर्मिज़ी की रिवायत है कि अता से वो हज़रत आयशा के बारे में कहते हैं, अब्दुल्ला जो मक्का में दफन है उनकी कब्र से गुजरी, आपने सलाम किया और फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हारी मेरी मिसाल वही है जैसे मोतमिम बिन नुवैरा ने कहा, यानी अपने भाई की मोहब्बत में ये अशार पढ़ती हैं। एक मुद्दत तक हम मोहब्बत के साथ हम प्याला और हम नवाला थे, लोग कहते थे कि इनका साथ ना टूटेगा। हम शादमानी के साथ बसर कर रहे थे जबकि हमसे पहले मौत ने किसरा और तुब्बा को भी नहीं छोड़ा। बस जब हम जुदा हो गए तो मैं चश्मे तसव्वुर में अपने आप को और मालिक को इतनी लंबी मुलाकात करते हुए देखता हूँ कि जैसे हम रात भर नहीं सोए। अल्लाह अकबर। फिर आपके आंसू आ गए और वहाँ से आ गई, यानी भाई का गम तो था ना दिल में। हज़रत उमर मुतमिम बिन नुवैरा से फरमाते, मुतमिम काश कि मैं शायर होता और अपने भाई जैद का मरसिया कहता, बखुदा नजद से जो भी हवा चलती है इसकी खुशबू लाती है, यानी भाई याद आता। जैद मुझसे पहले इस्लाम लाया, हिजरत की और शहीद हो गया। इतना कहकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। मुतमिम के जो अशार आपको बहुत पसंद थे वो ये हैं, यानी आप कह सकते हैं हज़रत उमर के पसंदीदा अशार। कहते, मेरी कसम अखबाब मुझे बहुत ज़्यादा हो बुका और आंसू बहाने पर मलामत करते हैं, यानी मेरे दोस्त मुझे कहते इतना ना रोया करो, और कहते हैं कि इस कब्र की वजह से जो लुई और दक के दरमियान है तुम जिस कब्र को भी देखते हो रोने लगते हो। मैं इनसे कहता हूँ, रहने दो भाई, नाले से नाला पैदा होता है, मुझे सारी कब्रें मालिक की कब्र लगती हैं, यानी हर कब्र में अपना भाई याद आता है। उंदलुस में बनु अलाहमर को जवाल हुआ। शायर इब्ने अब्दून ने इनकी मुसीबत पर मरसिया कहा, और उस मरसिया के अल्फाज भी सुन लीजिए। और यहाँ आप याद रखिए कि अरब कल्चर में मरसिये बहुत अहम थे, दिल का हाल बयान करते थे लोग मरसियों की सूरत में। कहते हैं कि ज़माना तो हर चीज़ के बाद इसका असर ख़त्म कर देता है, इसलिए सायों और सूरतों पर क्या रोना। मैं तुम्हें बराबर रोकूंगा और ज़रा भी ढील नसीहत में ना करूंगा कि शेर और कामयाबियों के बीच मत सो। जब उमर के फ़िदिये में खारिजा दिया गया तो अली के फ़िदिये में भी पूरी मखलूक दी जा सकती है, यानी एक भाई का जाना पूरी मखलूक के जाने के बराबर है। और अल्लाह फरमाते हैं, बस जब हमारा मामला आया हमने इस बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया, तलपट कर दिया। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल उस पानी जैसी है जैसे हमने आसमान से बरसाया, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पैदा हुए, जिसे इंसान भी खाते हैं और जानवर भी। हत्ता कि जब ज़मीन सरसब्स हो गई, ज़मीन वालों ने समझा कि इस पर इनका काबू है, और अचानक रात में या दिन में हमारा अजाब आ गया तो हमने इसे चूर चूर कर दिया, गोया कि वो कल यहाँ शादाब ना थे। बड़ी खूबसूरत आयतें, इस पर एक लेक्चर भी है, लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो, ज़िंदगी एक ढलता साया। तो आप देखिए कि हमने कितने किस्से पढ़ लिए इस बात के कि हमें भी इन लोगों की मुसीबतों से हौसला मिले। तो क्या सीखा? मुसीबत जदों से हौसला लीजिए। आप देखिए कि मुसीबत तसल्ली का ज़रिया, मुसीबत ज़दाओं को देखना और ख़ुद को ये कहिए कि आप अकेले नहीं हैं। अब सवाल पैदा होता है कैसे, थोड़ा सा इसको जज्ब करते हैं जो हमने पढ़ा। आप मरीज़ों को देखिए जो हॉस्पिटल्स में दर्द से कराह रहे हैं, कैदियों को देखिए जो सूरज की रोशनी से भी महरूम है, यानी जेल की सलाखों के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती, और औलाद किसी की जो जवानी में छिन जाए, वो मकरूज जो परेशान हाल है कि कर्ज अदा कैसे होगा। और सबसे बड़ी तसल्ली लेनी है ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लीजिए, कैसे मुसीबतों की चक्की मुस्तकिल चलती ही रही। सवाल पैदा होता है कि मुसीबतों में ख़ुद को कैसा बनाए। चंद जुमले लिखिए, यानी अल्लाह ना करे कि मुसीबत आए, लेकिन आएगी तो मुसीबतों में ख़ुद को ऐसा बनाइए जैसे ऊँट सहरा में चलने का आदी है। ज़रा मुश्किल नहीं होता उसको? तो आप भी अपनी ज़िंदगी में भी किसी मुसीबत, किसी दुख, बीमारी को वजह ना बनाएं अपने बैठने की, अपने रुकने की। इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में तवाज़ुन को बरकरार रखिए, सब्र करें और सवाब की उम्मीद रखिए, और माहौल को देख कर तसल्ली हासिल करें। और अगर किसी को मुसीबत ज़्यादा देखे ना तो उसको तसल्ली दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने मसूद से ये रिवायत है, कि जो किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे तो उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना मुसीबत ज़दा को मिलेगा। ज़रा नोट तो करें ये जुमला, और ये रिवायत इब्ने माजा में 1602 है। क्या हम कभी दूसरों को इस सोच के साथ तसल्ली देते हैं? चलें कोई बात नहीं, नहीं दी आप से दीजिए। ये तो आप जानते हैं ना कि दुख डलते हैं तो गुना माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। अब किसी पे तो दुख डला, इतनी बड़ी चोट पड़ी तो दर्जे मिले, तो आप सिर्फ उसको तसल्ली दें। यहाँ से देखिए कि इस्लाम कितना इंसान दोस्त मज़हब है। सवाल पैदा होता है कि हम किसी मुसीबत ज़दा को देखते हैं, बस आजकल कोरोना वायरस किसी का पॉजिटिव आ गया, किसी के घर में किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई, कोई लॉकडाउन के हालात की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हो गया। 100 किस्म की चीज़ें आगे पीछे भी हैं, ये तो वो हैं जो फी ज़माना हमारे इर्द गिर्द अगर हैं तो क्या करें। इस दुआ को याद कीजिए, कौन सी? जो अल्लाह के नबी ने सिखाई, तिर्मिज़ी की रिवायत है 3431, कि जब कोई किसी मुसीबत में मुब्तला को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तला कभी वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझको बचा लिया उस मुसीबत से जिसमें तुझे मुब्तला किया, और मुझे अपनी मखलूक में बहुत सारों पर फजीलत दी। आपने फरमाया जो किसी भी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ मांग लेगा अल्लाह उसको वो मुसीबत नहीं देगा। तो देखिए कितना नफ़े का सौदा है। लोगों को तकलीफ़ों में देखकर दुआएं मांगिए, उनको भी दुआ दीजिए कि अल्लाह आपको आफ़ियत दे, लेकिन अपने लिए भी मांगे। मैं इसको पढ़ते हुए कैसे महसूस कर रही हूँ, जैसे आप देखिए कि लोग आइसोलेशन में डाल देते हैं ना कि जी आप इनको मिले नहीं, इनको टच ना करें, शेक हैंड ना हो, बर्तन अलग, खाना अलग, पता नहीं क्या क्या अलग। ये दुआ भी यही है। सिक्योरिटी है आपके लिए, ये मास्क है आपका, ये आपके हाथों को साफ करने वाला वो सॉल्यूशन है जिसको अमूमन लोग इस्तेमाल करने के बाद खुद को जरासीमों से महफूज पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मक्तिला कभी, फीमेल हो तो मिम्मक्तिला की भी कह सकते हैं, और जमा हो तो मिम्मक्तिलाकुम, लेकिन हदीस के लफ्ज़ में मिम्मक्तिला का है, वही पढ़कर नियत दिल में रख लीजिए तो इंशाल्लाह आपको फिर वो तकलीफ़ नहीं आएगी। कितना बड़ा फ़ायदा है मुसीबत ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का। तो इस्लाम चाहता है कि लोगों को दुखों में तन्हा ना छोड़ दो। कई लोगों ने शेयर किया कि वो जो क्वारंटाइन थे उसके तन्हाई के दिन वो अजाब थे। आप देखिए ना, कोई आपके दरवाजे पे खाना डाल के भाग जाए, खुद ही उठा लेना, हम नहीं उठाएंगे, हम तुम्हें हाथ ना मिला दें, हम तुम्हें देख ना ले, बंदी को ऐसे लगता है मैं खुद जरासीम बन गया हूँ, पता नहीं मैं कोई अछूत हूँ। अंदर से जो इंसान की इज्जत नफ्स कुचलती है ना, मेरा ख्याल है उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसा ना कीजिए। हम मुसलमान हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं। सुबह शाम आउज़ु बिकलिमात इल्लाह तामाति मिन शर्री मा खलक पढ़िए। आपको एक सैनिटाइज़र पे इतना यकीन है कि इसके बाद जरासीम नहीं लगेंगे, तो क्या अल्लाह के नबी के बताए हुए ये सैनिटाइज़र्स नहीं यकीन आपको? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रुहु मा इस्मिही शैयन वहुव समीउल अलीम, तीन तीन बार सुबह शाम पढ़िए बिस्मिल्लाह। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। और जब लोग मुंह भर के कहते हैं ना फ़लाँ से लगा है मुझे ये, तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है इन्होंने पर्दा गैब को झांक के देख लिया। ये जुर्रत ना करे, मुसलमान जी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं आपके पास आई, मुझे आपसे ये जरासीम लग गए। देखिए कि लग सकते हैं पर आपको नहीं पता लगे हैं कि नहीं लगे, सिर्फ अजम्पशन। उसके घर गए तो उसके बाद आए तो स्नीजिंग शुरू हो गई। आप ना कहिए ऐसा, आपको नहीं सजता। बहुत सारे लोग हैं उनको सजेगा, आपको नहीं सजता। ये दुआएं मांगिए, इन दुआओं पे यकीन रखिए, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह आसानियों में डालता है। और सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आफात से बचाए, नस्लों की नस्लों को बचाए, और सिर्फ इस एक आफत से ना बचाए, अल्लाह आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दें। अपने लिए भी ये दुआ किया करें, गैरों के लिए भी किया करें कि अल्लाह शर को खैर बना दे। लेकिन इसके साथ फिर एक और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हमें खैर की चाबियाँ और शर के ताले बना दें। ज़िंदगी में नेकियों को रिवाज दीजिए, खैर के पैगंबर बनिए, लोगों के दुख दूर कीजिए, लोगों के दुखों की दवा बनिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको क्या देता है। आप बच भी गए तो इधर नहीं जाएंगे तो उधर जाएंगे। किसी ने कहा कि फ़लाँ से बचो, और इतनी एहतियाती तदाबीर, ये पहनना वो पहनना, ग्लव्स पहन रहे वो बंदा ये कुछ, और बाहर आए तो गाड़ी के नीचे आ गया। वो सारी चीज़ें पहनना पुनना पूरी तरह फुली इक्विप्टेड, हादसे से नहीं बच सका। चलो कोरोना से नहीं मरा होगा तो हादसे से मर गया। तो एक खास हद तक परेशान रहें, उसके बाद छोड़ दीजिए। परेशानी भी जब हद से बढ़ जाती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है।